कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सदभक्ताय नमः। वंशाकुलपतिरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर। अरे ठाकुर जी को दे दो राधा कृष्ण। महाराज परीक्षित को एक ऋषि के बेटे ने, ऋषि कुमार ने यह शाप दिया कि सातवें दिन तुमको सांप डसेगा और जरूर मर जाएगा। जब उस ऋषि के को पता चला कि हमारे बेटे ने महाराज परीक्षित को ऐसा भयंकर अभिशाप दे दिया है, तो लड़के को डांटा, तुम परीक्षित महाराज जी को जानते नहीं हो, कितने धर्मात्मा हैं, हमारे आश्रम में आया और हमने पानी नहीं दिया, पूछा भी नहीं, बातचीत भी नहीं की। अरे देश के राजा हैं, मरने के बाद में क्या होगा, देश में लुटेरे आ जाएंगे, धन जमीन की स्त्री की कोई रक्षा नहीं होगी, बहुत बुरा काम किया। अच्छा, साथ ही साथ दो अपने शिष्यों को भेज दिया, महाराज परीक्षित को बतलाओ। वो गए, महाराज परीक्षित को बतलाया, ऋषि कुमार ने आपको सांप से मृत्यु आपकी सातवें दिन कहा है, जरूर मरना है। तब उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी, अपने बेटों को सौंप। और सौंप करके गंगा के किनारे खाना पीना छोड़कर के और बैठ गए। और इतने में नारद जी, व्यास जी, 7,000 ऋषि लोग आए, सुखदेव गोस्वामी भी आ गए, 16 वर्ष की अवस्था नंगे। सुखदेव गोस्वामी को व्यास की गद्दी पर बैठाया और जब वो बैठ गए तो परीक्षित महाराज जी ने कहा, आज हमारा सौभाग्य है, सांप से काटने का मुझे डर नहीं है, भगवान का दर्शन करना सहज है, किंतु नारद और पराशर, गौतम इत्यादि लोगों का दर्शन करना बड़ा भारी कठिन है। आपके दर्शन हो गए, यही तो हमारे जीवन का फल मिल गया, ये सांप नहीं है बल्कि वरदान है। यह सुन करके परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न किया उनसे, दो प्रश्न ये था, जो अभी मरने वाला है, अभी मरने वाला है, संसार में ऐसा कोई है जो जन्म लिया नंगे रूप में, कुछ बड़ा हुआ, फिर बुढ़ापा आई और मर नहीं गया? विश्व भर के डायबिटिस जितने भी डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, बुढ़ापे को नहीं रोक सकते, मृत्यु को भी नहीं रोक सकते, आश्चर्य की बात है कि हम लोग समझते कि हम मरेंगे नहीं, विषयों को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए परीक्षित महाराज जी ने कहा, क्या कर्तव्य है जो अभी तुरंत मरने वाले हैं और जो आज नहीं मरेंगे तो कल परसों बरसों मरेंगे जरूर। कोई जन्मने वाला चिरकाल के लिए नहीं बच सकता। कुछ ऋषि महर्षि प्राणायाम इत्यादि के द्वारा 5,000 वर्ष 10,000 वर्ष या ब्रह्मा जैसे आयु के लोग करोड़ों करोड़ों वर्ष जीवित रहते हैं किंतु फिर भी मरना होता है, ब्रह्मा को भी, और की तो बात क्या। इसलिए समझो कि हमारा मरण होगा जरूर। जाने के समय में एक पैसा नहीं ले जाना है, यह भी याद रखो। किसी पुत्र को, स्त्री को, बेटा बेटी को कोई साथ नहीं ले जाएगा। इसलिए कहते हैं यह सब तो पड़ा रह जाएगा, आप हमारा जब से कल्याण हो क्या करना चाहिए मुझे अब बतलाइए। तब उन्होंने कहा, जिसको अभी तुरंत मर रहा है, मरने की सज्जा पर पड़ा हुआ है, वो तो उसको तुलसी मुख में दे दो गंगा जल और उसके कान में राम राम कृष्ण कृष्ण सुना दो, बस कृष्ण सुनाने से ही हो जाए। और जो कुछ दिन बचने वाला है, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, उनकी आराधना करनी चाहिए। कलयुग में नाम बड़ा सस्ता है, चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हैं, दिन में रात में जोर से धीरे धीरे माला से बिना माला का भी, अत्यंत दुराचारी पापी व्यक्ति भी भगवान का नाम कर सकता है और नाम के बल पर पवित्र हो जाएगा और उसका सदा के लिए कल्याण हो जाएगा, जगत में फिर नहीं आना पड़ेगा। और जो लोग भगवान का भजन नहीं करेंगे उनकी क्या गति होगी, सुकर कुकर गधे इत्यादि के रूप में आएंगे। मछली होकर के आए तो बातें क्या, साथ ही साथ में जलती हुई कढ़ाई के तेल में डाल देंगे खा लेंगे। आजकल मांस मछली इत्यादि सब देशों में चल रहे हैं किंतु बड़ी दुर्गति होती। इसलिए जीवन में कोई सुखी नहीं है, बुढ़ापा आएगा, रोग आएंगे, जो सबका भरण पोषण करता है उसको लोग पकड़ करके चलाते हैं। मैं स्पोर्ट्समैन बहुत बड़ा था, कितने गोल्डन कप इत्यादि जीत, अब हमको पकड़ करके लेकर के चलते हैं, कुछ दिन के वो बाद में वो भी नहीं कर सकेंगे। ये भी किसी दिन नौजवान थे, कारखाना इत्यादि सभी कुछ अपना संभालते थे, अब इन्होंने, ये बड़े बुद्धिमान है, इनकी पत्नी भी बड़ी बुद्धिमान है, सब कुछ छोड़ करके बेटे पर दे दिया, तुम जो करो हमको कोई मतलब नहीं, बड़े बुद्धिमान है। इसलिए पूछा तब उसके उत्तर में उन्होंने बतलाया, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ति मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि हधीरः तूर्णम जते तना पतेत अनुमत्य जावत निशेषाय विष खलु सर्वतः स्यात्। याद रखो, सुनने के लिए सुनो, केवल सुन लिया, इस कान से निकल गया तो उससे कोई लाभ नहीं। सुना तो परीक्षित महाराज जी जैसा सुनो, मन दे करके सुनो, जब हम करेंगे तब यह सुनना सुनना है, अन्यथा सुनना नहीं है। कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्। अभी भगवान ने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है, देवता लोग भी इसके लिए तरसते हैं, देवताओं की जोनी भोग की जोनी है, वहां पर भजन नहीं संभव है, जहाँ पर धन वैभव इत्यादि रहेगा, अमेरिका इत्यादि राष्ट्र हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर भजन नहीं संभव है। धन एक पैसे के ऊपर में एक पैसा एक, इस तरह से बढ़ाने में लगे रहेंगे और सुख भोग में, जितना पैसा आएगा सब अपने सुख भोग में लगाएंगे। अच्छी गाड़ी चाहिए, अंततः 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए जिसमें सब कुछ हो। वैसे बाड़ी चाहिए, उस बाड़ी में घर में स्विच दबाया, डाइनिंग रूम आ गया, स्विच दबा दिया, रसोई घर आ गया, स्विच दबा दिया, ये वो काउंसिल रूम आ गया, स्विच दबाया, सभी कुछ ऐसे ही सहज हो जाता है, वहां पर भजन नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, और उसमें भी भारतवर्ष में हो तो बहुत ही उत्तम है। आप लोग अपने को भारतवासी समझिएगा, भारत के ही हैं, भारत की संस्कृति आप लोग धारण करके चल रहे हैं और नहीं है। भारतवर्ष के बिना किसी भी संस्कृति में भगवान की आराधना नहीं है कहीं भी, और वो जन्म मरण से छुटकारा नहीं चाहते। वो कहते हैं कि गॉड गिव मी ब्रेड एंड बटर, बस यहीं तक। किंतु भारतीय संस्कृति नहीं, तो भगवान ने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया, और ऐसा दिया अर्थदम, इसके द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष और भगवत भक्ति प्रेमा भक्ति ब्रज भक्ति तक मिल सकती है, और किसी जन्म में नहीं होगा। कुकर सुकर भोग भोगते हैं हम लोगों से अधिक, वो उनको एक एक साथ में 10-10, 16-16 बच्चे होते हैं, विवाह की कोई चिंता नहीं है, और हम लोगों को एक लड़की पैदा हो गई तो सोचो जे कितना खर्चा, मुश्किल, घर बिक जाता है। इसलिए भोग वहां पर अधिक है मनुष्य सब, इसलिए अर्थदम, ये अर्थ देने वाला है परमार्थ, इसी में भगवान का भजन हम कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि हम भगवान के अंश जीवात्मा हैं, और ये भी जान सकते हैं कि जितने जीवात्माएं सब शरीर में हैं, पेड़ पौधे घास पतंग स्वर्ग देवता ब्रह्मा इत्यादि सबके सबके संचालक सृष्टिकर्ताओं के भी सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्ण है, उनका कोई नहीं है बनाने वाला। बस हमारा कृष्ण के साथ में क्या संबंध है, कृष्ण ने ही हमको पैदा किया, कृष्ण से क्या संबंध है, स्पेशल संबंध क्या, उसे हमारा सखा का भाव है, वात्सल्य भाव है, माता यशोदा जैसा पुत्र और माता का, या गोपियों जैसा मधुर संबंध है। हमारे जीव के स्वरूप में ये चीजें हैं। सदगुरु यदि मिल गया तो निश्चित करके ये बतला करके उसको उसी तरफ में ले जाएगा, और उसी रस में सिद्धि होगी, फिर वह या तो सखा, या तो कृष्ण को पुत्र, या गोपियों जैसा मोस्ट बिलव्ड प्राण प्रियतम मान करके भजन करेगा, और फिर वैसी ही सिद्धि होगी, दूसरे जन्मों में नहीं होगी। इसलिए परमार्थ को देने वाला है, इसलिए मृत्यु होने के पहले बस अपना यह कल्याण जो है यह साधन कर लो, अधिक संसारी कामों में मत उलझो, मत उलझो, भगवान को और मृत्यु को याद रखो, जब मृत्यु जरूर होनी है, कुछ नहीं साथ ले जाना है, और तब ये गुरु से संबंध पा करके और भजन में अग्रसर हो। यदि भजन नहीं किया बड़ी दुर्गति होगी, याद रखो, उस समय ये तुम्हारा धन वैभव युवावस्था स्त्री और बच्चे कोई भी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी को उपदेश देते हैं। कहते हैं देखो भगवान को भूला, भगवान के हम नित्य दास हैं, किंतु ज्यों ही हम ये मत समझो ये इस जगत के हम हैं, हम उसके पिता हैं, वो हमारा बेटा बेटी है, ये मेरी स्त्री है और ये देश मेरा है, मत समझो रिफ्यूजी होकर के इस जगत में आए हो। कैसे? भगवान की सेवा को भूल करके संसारिक भोगों की कामना की और वहां से भगवान की माया ने उसको उठा करके इस जगत में फेंक दिया और हथकड़ी बेड़ी लगा दी। हथकड़ी बेड़ी क्या है? हथकड़ी बेड़ी तो दिख नहीं रही, ममता लगा दिया, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पति हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा धन संपत्ति है, ये मेरा घर है, ये मेरा कुत्ता है। आजकल कुत्ते भी पालन पोषण करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते, कुत्ते को खूब दूध पिलाते तो भयं दिद्याद् अविनिवेशतस्यात्। भगवान की भूल जाने से माया ने हमें इस संसार में फेंक दिया, हथकड़ी बेड़ी लगा दी। क्या? मैं यह शरीर हूं और ये मेरे सभी हैं, ये हथकड़ी बेड़ी है, इस जंजीर को तोड़ नहीं सकते। जितना ये तोड़ने की चेष्टा करोगे अपने मन से उतना ये और कड़ी होती जाएगी ना? कड़ी होती जाएगी मैंने वो छूटने वाली नहीं है, और भी जकड़ जाएगी ये ममता। यदि किसी प्रकार से भगवान के भेजे हुए समस्त शास्त्रों को जानने वाले, समस्त संदेह को दूर करने वाले, भगवान की अनुभूति वाले और संसार से परम विरक्त हों, ऐसा सद्गुरु यदि मिल जाए तो उसके उपदेश से ये माया दूर हो सकती है। मैं और मेरा ये जो बंधन का कारण है, अभी मैं और मेरा करके देखो, महाराज भरत थे जो अवस्था में संसार को मलवत छोड़ दिया, स्त्री पुत्र कन्या धन राज्य पृथ्वी का राज्य छोड़ दिया, जंगल में गए भगवान का भजन करने के लिए, भजन करते 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 भावावस्था तक आ गए। भावावस्था आने के बाद में एक दिन देखा एक हिरण चल रही थी उनके पास ही नदी के किनारे, और इतने में बाघ कर गर्जन करके उसको उसके ऊपर में झपटा, और हिरणी गर्भवती थी, प्राण बचाने के लिए वो कूदी, नदी को पार किया, छलांग लगाया और बीच ही में उसका गर्भ गिर गया। छोटा हिरण का बच्चा निकला और नदी में गिर गया, डूबने उतराने लगा। वो तो उस पार गई किंतु इशारे से देखा जे एक ऋषि यहां पर तपस्या कर रहे हैं मुनि, उनकी तरफ में देखा और देखते देखते मर गए। मतलब क्या? उन्होंने समझा, भरत जी ने हमारे तरफ में इशारा किया है, उसको बचाना हमें है, बस झट भजन छोड़ दिया और बचाने के लिए गए। उसको उठाया गोदी में, आश्रम में ले आया, आश्रम उसको कहीं से दूध गैया के दूध पिलाने लगे। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा और इन्हीं को अपना माता पिता समझ लिया। जब वो ध्यान पर बैठते भगवान का तो वो आकर के सिंह तो थी नहीं, ऐसे रगड़ता और उनकी गोदी में छलांग लगा करके बैठ जाता, भजन उनका टूट जाता। धीरे 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 ऐसा हुआ कि उनका भजन सब रह गया और हिरण के लिए छटपट करते और मृत्यु समय में बस हिरण की याद आई तो हिरण बन करके आए। जिनकी जो मरते समय में आसक्ति होगी, जिनकी वो चिंता करेंगे, सारा जीवन धन संपत्ति के लिए मैं और मेरे के लिए किया तो उसी के लिए चिंता आएगी, फिर जन्म होगा। और जिन्होंने जन्म भर भगवान का चिंतन किया, उनका नाम किया, भजन किया, भगवान कृपा करके मरते समय उनकी स्मृति ठीक रख देंगे और भगवान के चरणों में उनकी मति लग जाएगी और वो भगवान के पार्षद होकर के मुक्त होकर के गोलोक वृंदावन में चले जाएंगे। इसलिए जहां तक हो कमल का पत्ता पानी में रहता है ना? किंतु पानी से संबंध नहीं है ना? उससे उसका यदि पानी उस पर डालो तो नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही संसार में रहते हुए भी बुद्धिमान पुरुष जो कुछ भी कार्य होता है वो भगवान के लिए करता है। भगवान के लिए करता है, टू प्लीज कृष्ण। व्हाट एवर ही डू ही डज टू प्लीज कृष्ण। इसलिए उसको कर्म का बंधन नहीं आता। और जो लोग अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए किसी को कुछ देते हैं, प्रीति करते हैं, उनका बंधन हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष कभी भी जो कुछ करे वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करे, अपने लिए कुछ मत करो। यदि कहो जो तुम भगवान से भक्ति मांगते हो तो अपने लिए हो गया। नहीं, भक्ति माने होता सेवा। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, ये कर्म बंधन नहीं है। ये भगवान की सेवा करने से भगवान और प्रसन्न हो सके। गोपियों का यही था, जो कुछ करती थी श्रृंगार करती थी कृष्ण के लिए, जो कुछ भी खाती पीती थी कृष्ण के लिए। हम भी जो सोते हैं किस लिए सोते हैं? सवेरे उठ करके तंदुरुस्त रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे। इसलिए इन विचारों को लेकर के भगवान का भजन करना चाहिए। थोड़ा सा कीर्तन
आबाय चरण दुर्लभ मानव जन्म दुर्लभ मानव I'm gonna go to the top.
Thank you.
उपदेश दे रहे हैं।
उन्होंने कहा ये देखो, प्राचीन काल में एक मुनि थे, उनका नाम दत्तात्रेय था। नंग थड़ंग चलते थे,
बहुत उनका स्वास्थ्य बहुत तगड़ा था, अधिक मोटा भी नहीं पतला भी नहीं, बहुत ही सुंदर सुकांत था, युवावस्था थी, सब समय बड़े प्रसन्न रहते थे, उनको कोई चिंता ही नहीं। तो महाराज जनक जी ने, नेमी महाराज जी ने से उनकी भेंट हुई। नेमी महाराज ने कहा जी हो आप तो बड़े प्रसन्न दिखते हैं, आपके पास न स्त्री है न धन है न राज्य है न कुछ है, नंगे बिल्कुल है, कहने के लिए आपके पास में कुछ नहीं, जो संसार के लोग चाहते हैं कुछ भी नहीं, किंतु आप बड़े सब समय आनंद से रहते हैं, कोई चिंता नहीं फिकर नहीं। तो उनको दया आ गई, ठहर गए और बोले महाराज जनक देखो,
यदु महाराज थे,
देखो महाराज, मैं संसार में रहते हुए भी संसार से कुछ मतलब नहीं हमारा, हमने 24 गुरु बनाए हैं, शिक्षा गुरु, गुरु एक होने पर भी दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मूल जो दीक्षा गुरु है उसके अनुकूल हो, उसका विरोधी नहीं हो। मैंने पृथ्वी से मैंने शिक्षा ली है, गुरु बनाया है, पृथ्वी को कोई काटे उसमें मल मूत्र करे, कुछ भी करे,
गड्ढा खोदे मकान बने,
तभी माँ से भी यदि कुछ नहीं कहती है, और उसमें कुछ भी लगाओ, पेड़ पौधे खाने के लिए गेहूं चना जो कुछ वो सब देती है, बड़ी सहिष्णु है। यदि कोई भगवान का भजन करना चाहे तो ऐसे ही सहिष्णु होना चाहिए, जो बात बात में बिगड़ता है, जिसको क्रोध होता है, वो लोक परलोक उसके सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग लोक परलोक में सुख चाहते हो, क्रोध को तो निकालो, क्रोध से बढ़ करके अपना कोई शत्रु नहीं है। तो ऐसे पृथ्वी देवी हैं, वृक्ष हैं, वृक्ष का छाल, उसका रस, उसकी लकड़ी, लकड़ी से तरह तरह के
फर्नीचर
इत्यादि बनते हैं, पलंग बनते हैं, न जाने क्या क्या होते हैं। खूब ठंड पड़ती है तो उसको जला करके ताप भी लेते हैं, फल होता है उसको पत्थर मारो तो फल दे देता है। यदि सहिष्णु ऐसा हो सको तो तुम भगवान का भजन कर सकते हो, नहीं तो भजन करने के लिए बैठे एक चींटी ने काट दिया, उठ करके बस रगड़ने लगे, मलने लगे, किसी ने कुछ कह दिया पास पड़ोस के लोगों ने, या बेटे बेटी ने, या किसी ने कुछ कह दिया, बस क्रोध हो गया, बस चित्त चंचल हो गया, क्या भजन करेंगे, ऐसा नहीं। देखो वायु जैसा रहो, वायु को भी मैंने गुरु बनाया, वायु दुर्गंध भी लेती है सुगंध भी लेती है, उसे छोड़ देती है, स्वयं निर्मल रहती है। सूरज पैखाने से, मल से, मूत्र से, समुद्र से, जहां तहां जो कुछ है उससे रस लेता है और शुद्ध करके पानी के रूप में उसको निर्मल करके बना देता है, जिससे कि लोग जीवित रहते हैं, ऐसा परोपकारी हो। अपना सब कुछ दूसरों के उपकार के लिए हो, विशेष करके भगवत भक्ति के लिए हो। देखो, एक तुमको मैं कहानी कथा सुनाता हूं। एक पेड़ पर एक कबूतर और एक कबूतरी रहती थी। दोनों में बड़ा प्रेम था, प्रेम से बातचीत करते थे, चोंच में चोंच मिलाकर प्रेम से रहते थे। कुछ दिनों के बाद में उन लोगों ने अंडे दिए और उस अंडे से छोटे छोटे पक्षी शावक उसमें से निकले और इधर उधर फुदकने लगे। अब उनको खाना चाहिए, इसलिए कबूतर और कबूतरी दोनों वन में गए, वहां पेड़ की डाल पर बैठे। पेड़ की डाल पर बैठने के बाद में वो अपने चोंच से कुछ लिया और घर में लौटे। देखा क्या, एक बहेलिए ने उन सब जितने उसके बच्चे थे, चेचे मेमे करते थे, सबको अपने जाल में पकड़ दिया। अब तो ये दोनों पिलाप करने लगे। इतने में बहेलिए ने इनको भी पकड़ लिया और सबको लेकर के रसोई बना करके खा गया। तात्पर्य क्या, हम भी बच्चे पालन पोषण इत्यादि करते हैं, उनमें बड़े आसक्त होते हैं, उनके दुखी हो जाने पर हम दुखी होते हैं, सुखी होने पर बड़े सुखी रहते हैं, और ये नहीं जानते हैं कि काल सिर पर मड़रा रहा है, कब आएगा। ये अभी छोटी है, छोटा है, अभी युवावस्था में है या वृद्ध है, ये नहीं देखता। कर्म के अनुसार में बच्चे चले जाते हैं, बूढ़े लोग रह जाते हैं। बूढ़े जल्दी नहीं मरते हैं, बुढ़िया नहीं मरती और वो मर जाते। जो अवस्था में काम करने वाला, करोड़ों करोड़ों रुपया पैदा करने वाला व्यक्ति मर जाता है और उसके असहाय लोग सब रह जाते हैं। काल किसी को नहीं देखता है, विचार नहीं करता, जिसका जब समय होता है जरूर ले लेता है। इसलिए हम सब लोगों को ये देखना है, याद रखना चाहिए, काल हमारे सिर पर मंडरा रहा है, कब आएगा कोई ठीक नहीं, गारंटी नहीं। परीक्षित महाराज जी को 7 दिन का समय था, हमें वो भी नहीं है। एक एरोप्लेन में 700 आदमी जा रहे थे, कुछ गड़बड़ी हो गई, आग लग गई और आकाश में ही सभी लोग समाप्त। ऐसे कितनी घटनाएं होती हैं। जा रहे हैं विवाह करके, पत्नी भी आया, अभी वर भी है, उसके माता और पिता है, कार से दिल्ली से जा रहे आगरा देखने के लिए और रास्ते में बस दुर्घटना हो गई, सभी खत्म। बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाएगा, इसलिए मृत्यु से पहले ही ये ठीक कर लो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। धन संपत्ति इसे सुख नहीं होगा, सुख होगा केवल यदि हम भगवान को प्राप्त कर लें, उनकी सेवा तभी। और एक कहानी कहा, एक वेश्या थी, उसका नाम पिंगला था। वह सोलह श्रृंगार करके अपने घर के दरवाजे पर बैठी हुई है, रात का समय, सोच रही ये व्यक्ति आएगा तो हमारे पास आएगा, काफी धन उससे हम ले लेंगे। वो चला गया, फिर अच्छा ये जो आ रहा है ये जरूर आएगा। ऐसे करते करते आधी रात बीत गई, सोई नहीं चित्त चंचल। आधी रात के बाद में उसको होश आया, ओ मैं क्या कर रही हूं, क्या कर रही हूं, ये व्यक्ति आएगा मुझे धन देगा और मैं सुखी हो जाऊंगी। इतनी यदि प्रतीक्षा भगवान के लिए यदि मैंने की होती तो आज मैं कितना सुखी होती। छोड़ो झंझट को, श्रृंगार उतार दिए, घर के भीतर चली गई और भगवान का नाम लेते लेते सो गई। ऐसे ही हम संसार की जब तक कामनाएं हैं या पैसा आने वाला है, ये आएगा ऐसा आएगा, अरे करोड़ों रुपए होने से क्या करोड़ों रुपए खाएंगे या क्या करेंगे, बैंक में रखेंगे सूद आएगी, किंतु खाएंगे वही चावल डाल जो गरीब खाते हैं। इसलिए सुखी होना चाहते हैं तो ऐसा देखो अर्जुन उद्धव, एक पुरुरवार नाम का एक व्यक्ति था, पुरुरवा बहुत सुंदर और बहुत प्रतिभाशाली राजा था, चारों दिशाओं के सब राजाओं को जीत करके चक्रवर्ती एम्परर हो गया। यह पुरुरवा एक दिन वन में गया, उसकी सुंदर स्त्री भी थी, बच्चे भी थे, तो एक दिन मृगया के लिए शिकार के लिए जंगल में गया। वहां पर उसने देखा देवलोक से उर्वशी वहां पर है, उर्वशी को देख करके बोले ये देवी आप कौन हैं, आप तो इस भूमंडल की कोई स्त्री नहीं है, आप निश्चित स्वर्ग की कोई परी होंगी, अप्सरा होंगी। हां मैं स्वर्ग से इंद्र की सभा की अप्सरा, मेरा नाम उर्वशी है, मैं इस जगत में, किस लिए आई हो, तो मैं पति ढूंढने के लिए आई हूं और देखा आप जैसे सुंदर जुआ प्रतिभाशाली राजा, संसार में आपके जैसा और पति ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, मैं आपसे विवाह करके आपके साथ में रहना चाहती। राजा ने कहा ये तो मेरा परम सौभाग्य है, मैं तुम्हें दे करके अपना मन तुमको दे चुका था, ठीक है राज्य में लौटे और उसे शादी कर ली। तब एक उसका शर्त था दो, देखो महाराज मैं आपसे शादी करूंगी किंतु शर्त यह है हमारे पास में दो मेमने हैं, मेमना समझते भेड़ के बच्चे हैं, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकती, उसकी रक्षा आपको करना पड़ेगा, रक्षा नहीं करने से छोड़ दूंगी, और दूसरी बात आपको नंगा नहीं देखना चाहती, यदि नंगा देख लिया कभी तो आपसे संबंध मैं चली जाऊंगी अपने अस्परा लोक में। एक दिन की बात है पुरुरवा उर्वशी के साथ में सोए थे, पासी में मेमने भी थे बाहर में, मेमने मैं बोलने लगे। इंद्र ने कहा जी हमारी अप्सरा उर्वशी गई अभी तक लौटी नहीं, उसको किसी प्रकार से लौटा लेना है, इसलिए अपने अनुचरों को आदेश दिया उसके मेमने को चुरा लाओ तो वो अपने आप आ जाएगी, वो रह नहीं सकेगी। तो इंद्र के अनुचर जाकर के वो मेमने को चुराने लगे, तो वो तो मैं करने लगे। उर्वशी ने कहा जी आप नामर्द हैं, आपके साथ मैंने शादी की, आप तो हिजड़े के समान हैं, आप मेरे दो हिरण मेमने के बच्चे को आप बचा नहीं सकते, धिक्कार है आपको, आपके साथ नहीं रहना है। राजा जैसे नंगे अवस्था में थे, दौड़े, उनके वस्त्र गिर गए, नंगे हो गए, और जा करके मेमने के बच्चों को छुड़ा करके ले आए। अस्परा ने कहा, अब आपके साथ नहीं, मैं अपने अस्परा लोक में जा रही हूं, आप नंगे, हमारे आपको मैं नंगा देख रहा हूं। वो कहते कि देवी एक मिनट के लिए ठहर जाओ, हमें छोड़कर के मत जाओ, हमने अपना प्राण दे रखा है, जाएगी हम मर जाएंगे, मत जाओ मत जाओ। किंतु सुनी नहीं, अस्परा लोक में चली गई। पीछे से ये भी उसके पीछे पीछे दौड़े, वहां पर गए। उसने समझाया उर्वशी ने, देखो जगत में सुख नहीं है, यह संसारिक सुख कैसे है, जैसे आग में घी देने से आग और जल उठती है, ऐसे है, कामों से कामना दूर नहीं होती है। समझो, मान जाओ मेरी बात, तुम लौट जाओ, भगवान का भजन करो। किंतु माने नहीं। जब वहां गए, होश हुआ, ओहो मैंने इससे शादी की और हमारे हजारों बरस दिन और रात चले गए, मुझे मालूम ही नहीं ये कब बीते, क्या हमने किया, धिक्कार है मुझे। मैंने सारे देशों को, राजाओं को जीता, किंतु अपने मन को नहीं जीत सका, धिक्कार है मुझे। और फिर वहां से लौटे, राज्य छोड़ दिया, छोड़ करके जंगल में चले गए और भगवान का भजन किया। ऐसे ही बुद्धिमान पुरुष को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और जैसे तैसे जीवन का निर्वाह करके, भगवान का भजन करके बस चला जाए। एम ऑब्जेक्ट यही रखे, राधा कृष्ण जुगल की सेवा ही हमारे लिए जीवन का मूल ऑब्जेक्ट है, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और वो होगा कैसे, भगवान ने अपनी सारी शक्ति नामों में भर दी है, जो कृष्ण कर सकते हैं उनके नाम कर सकते हैं, और जो मंत्र हैं सवेरे शाम दोपहर को पवित्र होकर के करना पड़ता है, और ना में पवित्रता पवित्र नहीं, दिन में रात में जब इच्छा हो तभी करो, सरल और सहज है। बस यही शिक्षा हम लोगों के लिए है। आप लोग भी याद रखें, एक दिन मरना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है, अभी से भगवान का भजन आरंभ करो, काम करते हुए भी नाम करो, जिससे मरते समय में संसार की याद न हो, फिर यहां न आना हो। बस आप कीर्तन करते हैं तो कर दीजिए। अच्छा, एक आप ही मास्टर थे ना?
हाँ,
एक मास्टर। और मास्टर थे
ऑस्ट्रेलिया
चले गए। ठीक,
Mm-hmm.